पाठ 20 अध्याय 16 व्यवस्था विवरण अध्याय 16 तोरह की पांचवी पुस्तक का एक विस्तृत भाग है जो तीन प्रमुख तीर्थ त्योहारों के वर्णन से शुरू होता है। फिर नागरिक और सरकारी नेताओं की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर चर्चा करता है और अंत में उचित पूजा प्रथाओं के संबंध में निर्देशों को नवीनीकृत करता है, साथ ही प्रतिबंधित प्रथाओं को भी दोहराता है। हमेशा की तरह हमें इस पुस्तक के संदर्भ को सामान्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए और संदर्भ यह है कि मूसा अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले ही इज़राइल के लोगों को अपना अंतिम संबोधन दे रहा है। जब वह मोआब के पहाड़ों में इज़राइल के सामने खड़ा होता है, जो यर्दन घाटी और परमेश्वर के लोगों के स्थायी निवास की लंबे समय से उम्मीद की जा रही जगह को देखता है, तो अगर कोई अंतर्निहित विषय है जिसे मूसा पेश करने का प्रयास कर रहा है, तो शायद इसे इज़राइल के सबसे उल्लेखनीय राजाओं में से एक दाऊद के बेटे सुलेमान के शब्दों में सबसे अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया जा सकता है। सभोपदेशक 12 का 13 बात समाप्त हो गई, सब कुछ सुना गया है। परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है।
मनुष्य का पूरा कर्तव्य ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। इब्रानी में मनुष्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द आदम है और इसका मतलब सामान्य रूप से मनुष्य है, इसलिए इस पद के अर्थ में इसका मतलब पूरी मानव जाति है। यह पद किसी भी तरह से अपने पाठकों को इब्रानियों तक सीमित नहीं रखती है। यह उन सभी गैर यहूदी या इब्रानी को संदर्भित करती है जो इज़राइल के ईश्वर की आराधना करते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि विश्वासियों की यह प्रवृत्ति रही है कि वे कुछ कानून और आदेश केवल इज़राइल के लिए बनाना चाहते हैं, जबकि अन्य केवल गैर यहूदियों के लिए हैं, और हम इस बारे में बहुत मनमानी करते हैं कि कौन सा क्या है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की लिखित आज्ञाएं उनके कानून में निहित हैं, और यीशु कहते हैं कि कानून कभी समाप्त नहीं हुआ है और यह तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि आकाश और पृथ्वी समाप्त नहीं हो जाते। मूसा जो कह रहा है वह हम पर, मसीहा के चर्च पर, उतना ही लागू होता है जितना कि सामान्य रूप से इब्रानी लोगों पर। आइए हम सब मिलकर व्यवस्था विवरण 16 पढ़ें। व्यवस्था विवरण अध्याय 16 पूरा पढ़ें। इज़राइल के पर्व न केवल इज़राइल की पूजा पद्धतियों के लिए बल्कि परमेश्वर के लोगों के रूप में उनकी पहचान स्थापित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। 7 बाइबल पर्व उनमें से हैं जिन्हें प्रभु अपने नियुक्त समय कहते हैं। ये चक्रीय घटनाएं हैं जो यहोवा द्वारा स्थापित कैलेंडर पर आधारित हैं, ताकि इज़राइल के पास रुकने और यह सोचने का कारण हो कि वे कौन हैं और उनका परमेश्वर कौन है। उन 7 पर्वाएं में से 3 विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं और उनके महत्व पर इस आदेश द्वारा जोर दिया गया है कि इब्रानियों को उन अवसरों पर प्रभु के सामने खुद को प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय अभयारण्य के स्थान पर तीर्थ यात्रा करनी है। चूंकि प्रभु की उपस्थिति को वाचा के संदूक के ऊपर रहने के रूप में देखा गया था, इसलिए खुद को प्रभु के सामने पेश करने का मतलब था कि व्यक्ति को संदूक के स्थान पर आना चाहिए जो निश्चित रूप से तंबू और बाद में मंदिर था। कानून के अनुसार वयस्क पुरुषों को ही ये तीर्थ यात्राएं करनी होती है। उनके घर से मंदिर की दूरी इन 3 वार्षिक त्योहारों को छोड़ने का कोई बहाना नहीं है। हम पहले ही देख चुके हैं कि ये सभी तीर्थ यात्रा त्योहार पारिवारिक अवसर हैं और इसलिए पूरे परिवार से आने का आग्रह किया जाता है, लेकिन यह प्रत्येक घर की पसंद पर छोड़ दिया जाता है। वास्तव में परिवार नियमित रूप से पुरुषों के साथ जाता था, क्योंकि ये ऐसे विशेष और प्रत्याशित उत्सव थे कि सभी उपस्थित होना चाहते थे, जबकि इज़राइल के रहने और काम करने का तरीका उनके पड़ोसियों के तरीके से काफी मिलता जुलता था। लेकिन धार्मिक उत्सव के लिए परमेश्वर की तीर्थ यात्रा करने का कार्य ज्ञात नहीं था। इन 3 तीर्थ यात्राओं ने इब्रानियों को एक अलग लोगों के रूप में चिह्नित किया, जो अन्य सभी लोगों और राष्ट्रों से अलग तरीके से एक अलग परमेश्वर की पूजा करते थे। तीर्थ यात्रा के लिए इब्रानी शब्द चाग है और परमेश्वर द्वारा इन 3 वार्षिक तीर्थ यात्राओं को अनिवार्य करने के लगभग 2000 साल बाद
एक नया और प्रतिद्वंद्वी मध्य पूर्वी धर्म बना जिसमें वही विचार शामिल था, इस्लाम। वास्तव में इस्लाम ने तीर्थयात्रा के लिए इब्रानी शब्द उधार लिया था, इसलिए अरबी में इसे हज कहा जाता है। हालांकि हमने बाइबल के पर्वों पर कई पाठ पढ़े हैं, लेकिन हम व्यवस्था विवरण के इन तीन तीर्थ पर्वों पर कुछ समय बिताने जा रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ पहलू ऐसे हैं जो आसानी से स्पष्ट नहीं है, खासकर गैर यहूदियों के लिए। इससे भी अधिक, चूंकि मसीह के जीवन में लगभग हर महान घटना इन तीर्थ पर्वों में से किसी एक पर केंद्रित थी, इसलिए हमें तुरंत संदेह करना चाहिए कि समय कोई संयोग नहीं था। अध्याय 16 में जिस पहले पर्व की चर्चा की गई है वह फसह है या इब्रानी में पेसाच। पद 1 में इसराइल को अवीव महीने का पालन करने और परमेश्वर को फसह का बलिदान चढ़ाने के लिए कहा गया है, क्योंकि यह वह रात थी जब यहोवा ने इसराइल को छुड़ाया था, उसने इसराइल को मिस्र के चंगुल से मुक्त किया था। अगर हमें एक ऐसी चीज की ओर इशारा करना है जो सबसे स्पष्ट रूप से इसराइल के लोगों को परमेश्वर के लिए अलग किए जाने की पहचान कराती है और जो यहूदी लोगों की आत्माओं की गहराई को भी झकझोरती है, तो वह फसह ही होगा। यह इसराइल को मिस्र से बचाने और उन्हें यहोवा के साथ एक पहचान योग्य लोगों के समूह के रूप में अलग करने का कार्य था, जो उनके परमेश्वर और राजा थे, जिसने उन्हें परमेश्वर के राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। अवीव उस महीने का इब्रानी नाम है जिसमें पेसाच मनाया जाता है, और इसका शाब्दिक अर्थ है अनाज की नई बालियां। अनाज का संदर्भ इस उत्सव के कृषि संबंध को इंगित करता है जो मिस्र से पलायन के संबंध के समानांतर चलता है। अवीव हमारे आधुनिक महीनों मार्च अप्रैल से मेल खाता है, इसलिए हम वसंत ऋतु से निपट रहे हैं। अवीव इब्रानी धार्मिक कैलेंडर वर्ष का पहला महीना भी है। मैंने पिछले सप्ताह उल्लेख किया था कि हमें इब्रानी धार्मिक कैलेंडर वर्ष को इब्रानी नागरिक कैलेंडर वर्ष के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए, जो तिशरी को इसका पहला महीना बनाता है। धार्मिक कैलेंडर वर्ष में तिशरी सातवां महीना, जो पतझर का मौसम है, को चिह्नित करता है। इसलिए जबकि अवीव धार्मिक कैलेंडर वर्ष के चक्र को नए सिरे से शुरू करता है, अवीव का पहला दिन नए साल का दिन नहीं है, बल्कि तिशरी महीने का पहला दिन यहूदी नव वर्ष है। तो फिर परमेश्वर ने अवीव से आरंभ होने वाले इस पृथक धार्मिक कैलेंडर वर्ष की स्थापना क्यों की? क्योंकि यह अवीव का महीना था जो एक पृथक राष्ट्र के रूप में इसराइल की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक है, और प्रभु को उस राष्ट्र का परमेश्वर माना जाता है। अवीव इसराइल की शुरुआत का प्रतीक है। आइए याद करें कि फसह को फसह इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बहुत ही भयानक और फिर भी अद्भुत रात में प्रभु स्वयं पूरे मिस्र देश से गुजरे और हर घर के ज्येष्ठ पुरुषों, पशुओं और मनुष्यों को मार डाला, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उन पर भरोसा किया और इसलिए एक साल के मेमने की बलि देने के निर्देश का पालन किया और अपने घरों के दरवाजों पर उसका खून लगाया। जिन परिवारों ने यहोवा के प्रति आज्ञाकारिता और समर्पण के कार्य के रूप में ऐसा किया, ये मुख्य रूप से लेकिन सार्वभौमिक रूप से नहीं इब्रानी परिवार थे, उस रात मृत्यु से नहीं छुए गए, और इस विनाशकारी ईश्वरीय निर्णय ने फिरौन को आखिरकार यह समझने पर मजबूर कर दिया कि वह अब और परमेश्वर के लोगों पर अपनी पकड़ बनाए नहीं रख सकता। अगली सुबह इसराइल गोशेन, मिस्र का उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र जहां अधिकांश इसराइली रहते थे, की भूमि में एकत्र हुए और मूसा के नेतृत्व में वे सदियों की गुलामी और उत्पीड़न से दूर चले गए। जबकि मुझे यकीन है कि अंग्रेजी में फसह को हमेशा पासओवर ही कहा जाएगा, वास्तव में इब्रानी शब्द पेसच, जिसका अनुवाद पासओवर के रूप में किया जाता है, का अर्थ पारित करना नहीं है। यह क्रिया पासच से आता है जिसका अर्थ है रक्षा करना। इसीलिए पद 2 में जहां हम पढ़ते हैं कि तुम फसह के बलिदान को बलि चढ़ाओगे, इब्रानी में जो कहा गया है वह ये है कि वे जवाह पेसच को वध करेंगे। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है सुरक्षात्मक बलिदान, इस तथ्य का जिक्र करते हुए कि इसराइल को मिस्र पर ईश्वर की अंतिम और घातक विपत्ति से बचाया गया था। यह केवल उस सुरक्षा का परिणाम था
कि कोई कह सकता था कि उन्हें छोड़ दिया गया था, और यह नाम पासओवर तब से अटका हुआ है जब से जेरोम ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में बाइबल के लैटिन वल्गेट संस्करण का पुनः अनुवाद किया और पेसाच का अनुवाद करने के लिए पासओवर शब्द चुना गया। रब्बियों ने लंबे समय से माना है कि मिस्र में सबसे पहले पेसाच मनाने के तरीके और उसके बाद इसे मनाने के तरीके में अंतर है। इससे पहले कि मैं उन अंतरों को प्रदर्शित करूं, मुझे एक ऐसी बात बतानी चाहिए जो ईसाई और यहूदी दोनों को फसह के उत्सव के बारे में भ्रमित करती है।
पेसाच पासओवर एक दिन का उत्सव है जो हर साल अवीव 14 तारीख को मनाया जाता है, या जैसा कि बाद में बेबीलोन की भाषा में कहा गया, निसान 14 तारीख। अगले दिन अवीव 15 तारीख को एक और अलग 7 दिवसीय बाइबल उत्सव शुरू होता है जिसे अखमीरी रोटी का उत्सव या इब्रानी में मत्जा का उत्सव कहा जाता है। फिर मत्जा के उत्सव के 7 दिनों के बीच में एक और बाइबल उत्सव एक ओवरलैपिंग फैशन में होता है, बिक्कुरिम पहला फल, जो अवीव के 16 तारीख को होता है। इसलिए तेजी से क्रम में हमारे पास 14 तारीख को अवीव में पासओवर है, फिर 15 तारीख को मत्जा की शुरुआत है, और फिर 16 तारीख को पहला फल है। जबकि पासओवर और पहला फल एक दिन की घटनाएं हैं, मत्जा 7 दिनों तक चलता है और पहला फल मत्जा के दौरान होता है। बात यह है क्योंकि ये 3 वसंतकालीन बाइबल पर्व आपस में बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि 3 के बीच में जो पर्व आता है उसे मत्जा का पर्व कहा जाता है, इसलिए 3 पर्वों के पूरे बंडल को केवल मत्जा बिना खमीर की रोटी का पर्व कहना मानक प्रथा बन गई है। लेकिन जो बात इस पूरे मामले को और भी अधिक समस्याग्रस्त बनाती है वह यह है कि 3 पर्वों के पूरे बंडल को पेसाच पासओवर कहना भी उतना ही आम हो गया है, क्योंकि पासओवर मिस्र से इसराइल के मार्ग का प्रतीक है। ऐसा मत सोचिए कि यह केवल बम्पर स्टिकर धर्मशास्त्र या बाइबल के ढीले ढाले विद्वानों की ओर हमारी आधुनिक प्रवृत्ति के बारे में है, न ही यह इब्रानी भाषा को समझने में गैर यहूदी त्रुटियों का परिणाम है। इससे बहुत दूर, मसीह के युग से बहुत पहले इन 2 नामों पासओवर और बिना खमीर की रोटी का उपयोग इब्रानी लोगों द्वारा एक दूसरे के स्थान पर किया जाता था। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि नया नियम वसंतकालीन बाइबल पर्वों से ठीक इसी तरह निपटता है। एक बार सुसमाचार फसह के एक दिन को फसह के रूप में संदर्भित करेगा, दूसरी बार यह 3 पर्वों के पूरे समूह को फसह के रूप में संदर्भित करेगा, एक बार यह मत्जा के पहले दिन और उसके बाद के 6 दिनों को अखमीरी रोटी का पर्व कहेगा, और फिर अन्य समय में यह 3 पर्वों के पूरे समूह को मत्जा अखमीरी रोटी का पर्व कहेगा। भ्रमित करने वाला निश्चित रूप से यह है, और यही कारण है कि हमें हमेशा पवित्र धर्म ग्रंथ, पुराने नियम और नए नियम को इब्रानी मानसिकता से देखना चाहिए, जो विशेष रूप से उस युग में विद्यमान थी जब ये कुछ अंश लिखे गए थे। अन्यथा हम कभी कभी यह सोचकर उलझन में पड़ जाएंगे कि कुछ बातें सरल और सीधी हैं, जबकि वास्तव में उनका अर्थ इब्रानी संस्कृति, विचार और परंपरा में गहराई से छिपा हुआ है। मैं आपको इसके कुछ उदाहरण दूंगा, लेकिन पहले आइए हम इन 3 वसंत उत्सवों के मिस्र में उनके उद्घाटन के समय मनाए जाने के तरीके और जंगल में मनाए जाने के तरीके में अंतर पर वापस आते हैं, और फिर जब वे कनान में बस गए तो इसमें पुनः क्या परिवर्तन हुआ, और फिर जब यहूदी लोग विश्व के गैर यहूदी देशों में फैल गए तो सदियों के दौरान इन उत्सवों में क्या परिवर्तन हुआ। मिस्र में मूल फसह घर में मनाया जाता था। प्रत्येक घर का ज्येष्ठ पुत्र कमोबेश परिवार के पुजारी की तरह व्यवहार करता था, हालांकि उस ज्येष्ठ पुत्र को पुजारी की उपाधि नहीं दी जाती थी और न ही उसे पुजारी माना जाता था, और इसलिए यदि वह पर्याप्त बड़ा होता तो आम तौर पर विभिन्न अनुष्ठानों का नेतृत्व करता था। यह ज्येष्ठ पुत्र ही था जो उचित रूप से मेमने का वध करता था और उसके खून को अपने परिवार के घर के चौखटों पर रंगता था, क्योंकि का यह उसका काम था और खा यह उसका जीवन था जो इस कार्य से सुरक्षित होगा। याद रखें, ज्येष्ठ पुत्र ही परिवार का एकमात्र सदस्य था जो खतरे में था, क्योंकि यह केवल ज्येष्ठ पुत्र अर्थात परिभाषा के अनुसार परिवार का ज्येष्ठ पुत्र ही था जिसे ईश्वर के हाथों मृत्यु का खतरा था। जब इज़राइल मिस्र में था तब तक कोई आधिकारिक पुरोहित वर्ग स्थापित नहीं हुआ था। यह मिस्र छोड़ने के कुछ महीने बाद माउंट सिनाई पर हुआ था। फिर भी मिस्र में रहने वाले बहुत से इब्रानियों को अब्राहम, इसहाक और याकूब से प्राप्त कुछ धार्मिक अनुष्ठानों की दूर की याद थी, और इसलिए उन्होंने उस युग के रीति रिवाजों का पालन किया और प्रत्येक परिवार ने प्रत्येक घर में मौजूद ज्येष्ठ पुरुष को अपने पारंपरिक अनुष्ठानों के अधिकारी के रूप में मान्यता दी। इसलिए जबकि मूल पेशाच प्रत्येक परिवार के निवास के भीतर होना था, एक बार जब इसे वार्षिक अनुष्ठान के रूप में मनाने का कानून दिया गया तो स्थिति बदल गई और अब पेशाच बलिदान और बलि के मेमने का भोजन केवल केंद्रीकृत अभयारण्य में ही होना था। यही पद दो के शब्दों का अर्थ है जहां यह कहा गया है कि बलिदान उस स्थान पर होना चाहिए जहां प्रभु अपना नाम स्थापित करता है। इसके अलावा लेवी पुजारी बलिदान अनुष्ठान के एकमात्र अधिकृत अधिकारी बन गए और इस प्रकार उन्होंने परिवारों के आध्यात्मिक नेताओं के रूप में ज्येष्ठ पुत्रों की जगह ले ली। मूल फसह और उसके बाद के फसह के बीच अगला अंतर यह है कि बलि के लिए झुंड या झुंड में से कोई जानवर हो सकता है। इसका मतलब है मेमने, बकरियां और संभवतः मवेशी भी। निर्गमन की पुस्तक के अंश जब आवश्यक जानवर पर चर्चा की जाती है कहते हैं कि यह झुंड अर्थात भेड़िया बकरी में से होना चाहिए। रब्बियों को इससे परेशानी हुई है और आम तौर पर उन्होंने यह तय किया है कि मूल निर्देश का पालन करना सबसे अच्छा होगा, जिसमें मेमने का उपयोग करना था। इन अलग अलग निर्देशों के लिए बताए गए कुछ कारण यह हैं कि एक भेड़ या बकरी लगभग 10 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक सामान्य परिवार के लिए आवश्यक मांस की मात्रा के लिए उपयुक्त होगी, लेकिन एक बार जब इसराइल कनान की भूमि में बस गया तो कई परिवारों के लिए एक गाय जैसे एक बड़े जानवर को साझा करना संभव हो गया। इसके अतिरिक्त सामान्य साक्ष्य यह है कि चूंकि मिस्रवासी भैरों की अपेक्षा मवेशियों को अधिक पसंद करते थे तथा चूंकि इब्रानियों, जहां तक हमें झात है, ने उस समय भैरों और बकरियां पाली थीं न कि मवेशी, इसलिए यह आवश्यक था कि एक इब्रानी बलि के लिए मिस्री से गाय खरीदे, जो कि वास्तव में उस प्रथम फसह की रात को होने वाली घटना के लिए उपयुक्त नहीं था। चाहे जो भी हो, बलि के पशु के रूप में मेमने का उपयोग आम तौर पर स्वीकृत प्रथा बन गया और मवेशियों का उपयोग अन्य प्रकार के आवश्यक बलिदानों तक सीमित हो गया, जो आम तौर पर बाइबल के पर्वों के दौरान तंबू और मंदिर में होते थे। पद 5-7 सभी परिस्थितियों में वध के लिए मेमने को केंद्रीय अभयारण्य में लाने की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं, लेकिन यह 14 अवीव निसान के दिन का वह समय भी स्थापित करता है जब वध किया जाना है। यह शाम को सूर्यास्त के समय है। अब आइए स्पष्ट करें कि इसका क्या अर्थ है, क्योंकि यह यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के समय वास्तव में क्या हुआ इस बारे में हमारी समझ को बहुत बढ़ाएगा। शाम को सूर्यास्त के समय का अर्थ है दिन के अंत में, लेकिन अंधेरा होने से पहले। इस आवश्यकता का कारण बहुत सरल है। सबसे पहले मिस्र में ऐसा ही किया जाता था। दूसरा, इब्रानी 24 घंटे का दिन पश्चिमी संस्कृति की तुलना में अलग तरीके से गिना जाता है। पश्चिमी संस्कृति में एक घड़ी एक दिन को मापती है। हम आकाश में सूर्य की स्थिति या बाहर अंधेरा या उजाला है उसके आधार पर नहीं चलते। हमने बहुत पहले मनमाने ढंग से एक समय स्थापित किया था जिसे मध्य रात्रि 12 बजे कहा जाता है, वह क्षण जब एक दिन समाप्त होता है और अगला दिन शुरू होता है। लेकिन वह बाइबल का दिन नहीं है और यह वह समय नहीं है जब इसराइल या मध्य पूर्वी संस्कृति में दिन समाप्त और शुरू होते थे। इब्रानी और इसलिए बाइबल का दिन सूर्यास्त के साथ समाप्त होता था, जो निश्चित रूप से वह क्षण है जब एक नया दिन भी शुरू होता है। आम तौर पर इसे उस क्षण के रूप में परिभाषित किया जाने लगा जब सूरज क्षितिज पर डूब जाता है और 3 सितारों का एक निश्चित समूह शाम के आकाश में दिखाई देने लगता है, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी कम हो जाती है कि उन्हें देखा जा सकता है। इसलिए हमारी समस्या हमेशा पश्चिमी दिन को इब्रानी दिन के साथ समेटने की होती है, जब हम बाइबल में दिन के दौरान कुछ खास चीजें कब हुई
इसके बारे में पढ़ते हैं। इसलिए व्यवस्था विवरण में इस अंश का उद्देश्य यह है कि पेशाच मेमनों को 14 अवी के दिन के अंत में तंबू में बलि किया जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि नया दिन शुरू होने के लिए पर्याप्त अंधेरा हो जाए। जाहिर है कि अगर वे हजारों मेमनों को मारने के लिए बहुत देर तक इंतजार करते तो दिन 14 से 15 तक बदल जाता और कानून टूट जाता। इसलिए जब इसराइल कनान में बस गया और नियमित रूप से फसह का पालन करना शुरू कर दिया तो हजारों लोग तंबू मंदिर में दिखाई देते और दिन के अंत तक अपने मेमनों को पुजारी की मदद से बलि किए जाने का इंतजार करते। समय के साथ दिन के अंत में इतने कम समय में उन सभी हजारों मेमनों को मारने की रसद लगभग असंभव हो गई और इसलिए सूर्यास्त शब्द के अर्थ की परिभाषा में बदलाव किया गया। चूंकि इब्रानियों ने सूर्य के अपने चरम पर पहुंचने, आसमान में उसका सबसे ऊंचा बिंदु जिसे हम दोपहर कहते हैं से मध्याह्न को चिह्नित किया था, तो उस बिंदु से आगे सूर्य अस्त होने लगता है क्योंकि वह नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। यीशु के दिनों में यह सूर्य के चरम पर पहुंचने के लगभग 3 घंटे बाद, जिसे हम दोपहर 3 बजे कहते हैं, था कि अवीव 14 को मेमनों का वध शुरू हुआ। आम तौर पर यह लगभग शाम 6 बजे समाप्त होता था, क्योंकि चूंकि यह वसंत ऋतु थी इसलिए दिन 6:30 से 7 बजे के बीच कहीं नए दिन में बदल जाता था, जिस तरह से हम आज इसे घड़ी पर मापते हैं, ये मानते हुए कि हम यरूशलेम के लगभग समान अक्षांश पर थे। मिस्र में सबसे पहले और बाद के सभी उत्सवों के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले फसह का कृषि से कोई संबंध नहीं था, यह पूरी तरह से मिस्र से पलायन के बारे में था। बाद में कृषि का तत्व जोर आ जाएगा।
चलिए इसके बारे में बस एक पल बात करते हैं, क्योंकि जब हम शावोत पर चर्चा करते हैं तो मैं कुछ अतिरिक्त जानकारी भरूंगा जो कुछ टुकड़ों को एक साथ लाने में मदद करेगी। कृषि तत्व को फसह के पर्वों के समूह में प्रथम फल नामक पर्व के समन्वय के द्वारा जोड़ा गया था, जो फसह के दूसरे दिन हुआ था। इसके लिए सामान्य व्याख्या यह है कि जौ की पहली फसल, खेतों में पकने वाला पहला प्रकार का अनाज, प्रथम फल के दिन लाई गई थी और फिर कई हफ्ते बाद एक और फसल थी, लेकिन इस बार यह गेहूं जो जौ से बाद में पकता है की कटाई की गई थी। तकनीकी रूप से प्रथम फल जौ की फसल की शुरुआत का संकेत नहीं था, बल्कि प्रक्रिया यह थी कि बिना पके जौ, हरा जौ का एक पूला एक तंबू समारोह में पुजारी द्वारा लहराने के लिए लाया जाता था। कुछ दिनों बाद जब जौ वास्तव में पक जाता और भूरा हो जाता है तो कटाई शुरू हो जाती है। कोई भी किसान जानता है कि आप कैलेंडर के अनुसार फसल की कटाई का दिन तय नहीं कर सकते, आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक आप यह नहीं देख लेते कि फसल कब कटेगी।
अनाज या फल या अंगूर या जो कुछ भी वास्तव में पकने के सटीक बिंदु को प्राप्त कर चुका है, जो कि इष्टतम है, और निश्चित रूप से यह वर्ष दर वर्ष यादृच्छिक रूप से भिन्न होगा। इसलिए 16 तारीख को अवीव में प्रथम फल उत्सव का पालन वास्तव में एक पूर्व फसल उत्सव था। यह जल्द ही आने वाली जौ की फसल की प्रत्याशा करने का दिन था। यह ऐसा समय नहीं था जब फसल सक्रिय रूप से हो रही थी और इसलिए वास्तविक उपयोग योग्य फसल का पहला हिस्सा प्रभु को प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में रब्बी बताते हैं कि जौ के अभी तक पके हुए पूले को प्रभु के सामने लाकर वे उनसे अच्छी फसल देने की विनती कर रहे थे। इस बिंदु पर उन्हें अभी तक नहीं पता था कि फसल का परिणाम क्या होगा।
जबकि मैंने मूल से लेकर बाद के समय तक फसह पर्व मनाने के तरीके में कुछ अंतरों को सूचीबद्ध किया है, अधिकांश भाग के लिए अनुष्ठान एक जैसा ही रहा है, कम से कम जब तक मंदिर खड़ा था। उदाहरण के लिए मेमने को आग पर भूनना है और उसका कोई भी हिस्सा कच्चा नहीं छोड़ना है और उसकी कोई भी हड्डी नहीं तोड़नी है। लेकिन शायद प्रोटोकॉल का सबसे प्रतीकात्मक जो कभी नहीं बदला गया वह यह है कि मेमने के खाने के साथ साथ और संयुक्त पर्व के दिनों की पूरी अवधि के दौरान केवल अखमीरी रोटी ही खाई जानी है।
यह हमें एक और पर्व की चर्चा में एक अच्छा मोड़ देता है जो फसह के अगले दिन शुरू होता है, जिसे अखमीरी रोटी का पर्व या मत्सा कहा जाता है। ध्यान दें कि व्यवस्था विवरण 16:8 में हम कैसे सीधे फसह से मत्सा तक जाते हैं बिना इसे हाईलाइट किए।
यानी हम फसह के पर्व से सीधे अखमीरी रोटी के पर्व में चले जाते हैं बिना किसी अंतराल के, और वहाँ पर्व के पूरे समय के दौरान अखमीरी रोटी खाने की बात कही गई है। अंतिम तीन वसंत पर्व एक विशेष सभा के साथ चिह्नित हैं। यह सभा तंबू में नहीं होती है, यह छोटे समूहों में होती है, जिस भी गांव या शहर में प्रत्येक परिवार रहता है।
मुझे वापस आकर थोड़ा सा सारांश देना चाहिए ताकि हम फिर से अपने स्तर पर पहुंच सकें। व्यवस्था विवरण का यह 16वां अध्याय मुख्य रूप से तीन ईश्वर निर्धारित तीर्थयात्रा झाग त्योहारों से संबंधित है। मत झा का पर्व, सप्ताहों का पर्व शावोत, और झोपड़ियों का पर्व सुखकोत। पहला वसंत ऋतु का पर्व है, दूसरा ग्रीष्म ऋतु का पर्व है, और अंतिम पतझड़ का पर्व है। हालांकि मैं अब तक आपसे केवल मत्ज़ा के वसंतकालीन पर्व के बारे में बात कर रहा हूं, इसका भ्रामक हिस्सा यह है कि अखमीरी रोटी का वसंतकालीन पर्व स्वयं तीन पर्वों के समूह का हिस्सा है, फसह, अखमीरी रोटी और प्रथम फल। इसलिए तीन वसंतकालीन पर्वों के समूह को दिए गए नाम को तीन बल्कि फैले हुए तीर्थ पर्वों के साथ न मिलाए, जो इस अध्याय का मुख्य जोर है। अब तक हम केवल तीन तीर्थ पर्वों में से पहले मत्ज़ा के वसंतकालीन तीर्थ पर्व पर चर्चा कर रहे हैं।
तीन वसंतकालीन पर्वों के इस समूह में से मत्ज़ा का पर्व ही वास्तव में तीर्थयात्रा पर्व है। फसह तकनीकी रूप से तीर्थयात्रा पर्व नहीं है, न ही प्रथम फल एक तीर्थयात्रा पर्व है। हालांकि चूंकि मत्ज़ा के तीर्थयात्रा पर्व के लिए तंबू तक पहुंचने के लिए यात्रा करना आवश्यक है, इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि फसह के मेमने का वध वहां मत्ज़ा के एक दिन पहले किया जाना चाहिए। खैर, यह व्यावहारिकता की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब मैं एक और महत्वपूर्ण तत्व जोड़ना चाहता हूं जो बताता है कि भले ही फसह एक तीर्थ यात्रा पर्व नहीं है, फिर भी यह एक आवश्यकता थी कि फसह के मेमने को केंद्रीय अभयारण्य में बलि किया जाना चाहिए। परमेश्वर ने लैव्य व्यवस्था में घोषणा की कि मत्ज़ा के पर्व का पहला दिन और मत्ज़ा के पर्व का आखिरी दिन सप्त के दिन थे, सप्त का दिन नहीं सातवां दिन। सातवां दिन सप्त, लेकिन ये विशेष दिन थे जब कोई नियमित काम नहीं किया जाना था ताकि पर्वों की तैयारी की जा सके। चूंकि मत्ज़ा के पहले दिन को सप्त दिन घोषित किया गया था, कानून ने एक इब्रानी तीर्थयात्री को उस दिन यात्रा करने की इजाजत नहीं दी। इसलिए इसराइलियों को मत्ज़ा के पहले दिन से कुछ दिन पहले तंबू की यात्रा करनी पड़ी, जो कि अवीव 15वां था। इसका मतलब है कि वे स्वचालित रूप से अवीव 14वें पासओवर या कुछ दिन पहले अवीव 15 के सप्त दिन यात्रा करने से बचने के लिए तंबू या मंदिर में थे, जिससे यह आवश्यक हो गया कि यह तंबू में था जहां मेमनों को वैसे भी वध किया जाना था। दूसरे शब्दों में, यदि आपके लिए बुधवार की सुबह कहीं यात्रा करना आवश्यक था लेकिन किसी कारण से मंगलवार को यात्रा करना असंभव था, तो यहूदियों के लिए एक दिन पहले फसह का पर्व था, इसलिए उनके पास मंदिर में अपने मेमने को मारने और पकाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।
मैंने आपको बताया था कि यह जटिल है, लेकिन मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगर आप कभी यह समझना चाहते हैं कि यीशु मसीह, अंतिम भोज, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ क्या हुआ, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब आइए इस सप्त मामले के बारे में बात करते हैं। आम तौर पर दो तरह के सप्त होते थे, साप्ताहिक सातवें दिन का सप्त और फिर विभिन्न अतिरिक्त सप्त दिन जो बाइबल के पर्वों के लिए निर्धारित किए गए थे। न केवल अलग अलग तरह के सप्त थे बल्कि प्रत्येक प्रकार के सप्त पर क्या निषिद्ध था और क्या अनुमत था, यह भी अलग अलग था। सातवें दिन का सप्त इन अतिरिक्त विशेष सप्त दिनों से पूरी तरह से अलग पालन था, जो पर्वों से जुड़े थे और वे अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाए गए थे। सप्त शब्द का अर्थ आराम करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है रुक जाना। इसका अर्थ है वह काम करना बंद करना जो आप अपनी आजीविका चलाने या अपने नियमित घरेलू कामों को पूरा करने के लिए सामान्य रूप से करते हैं। इसका अर्थ है अपने रचनात्मक प्रयासों को रोकना। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पूरे दिन सोफे पर लेटे रहना है। इसका मतलब यह नहीं है
कि आप अपने बच्चों या नाती नातिनों के साथ नहीं खेल सकते। हर सप्ताह होने वाले सातवें दिन सप्त में सप्त की सभी आवश्यकताओं में सबसे कठोर नियम थे, जिसमें कोई भी भोजन तैयार न करना भी शामिल था, क्योंकि जंगल में जब परमेश्वर ने इसराइल को मन्ना के माध्यम से भोजन कराया था तो इसी तरह इसका पालन किया जाता था। याद करें कि सप्ताह के छठे दिन सप्त से एक दिन पहले इसराइल को सामान्य से दोगुनी मात्रा में मन्ना इकट्ठा करना था और इसे पकाना था और इसे अपनी पसंद के अनुसार तैयार करना था, ताकि वे सातवें दिन सप्त के दिन उस अतिरिक्त हिस्से को खा सकें बिना किसी अतिरिक्त तैयारी के। विभिन्न पर्वों से जुड़े इन अतिरिक्त सप्तों की अलग अलग जरूरतें थीं। कुछ के लिए जरूरतें दूसरों की तुलना में ज्यादा कठोर थीं। वसंत ऋतु के पर्वों से जुड़े अतिरिक्त सप्तों की जरूरतें ये थीं कि इन विशेष सप्तों पर भोजन तैयारी जारी रह सकती है, यात्रा पर लाए जाने वाले जानवरों को इकट्ठा करना और मंदिर में बलिदान के लिए समय पर पहुंचने के लिए यात्रा की अन्य तैयारियां जारी रह सकती हैं। इनमें से कुछ त्योहार सप्त 24 घंटे के दिन के लिए सामान्य शुरुआत और समाप्ति समय पर शुरू और समाप्त भी नहीं होते थे। कुछ त्योहार सप्त के दिन के बदलने के क्षण से शुरू हो सकते हैं लेकिन दोपहर तक या दिन के बीच में समाप्त हो सकते हैं। अन्य समय में एक विशेष त्योहार सप्त दोपहर तक या उसके बाद शुरू नहीं हो सकता है, इसीलिए इसमें बहुत अधिक भिन्नता थी। मैं फिर से पुष्टि करता हूं कि मैं सातवें दिन के सप्त के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। इसका कार्यक्रम और अनुष्ठान तय था, दृढ़ था और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ये त्योहार सप्त के दिन अतिरिक्त दिन है जहां कार्य कार्यक्रम को संशोधित और सीमित किया गया था, और आने वाले बाइबल के पर्व की तैयारी जिसके साथ वे जुड़े थे उन्हें अलग अलग डिग्री तक जारी रखने के लिए प्रभु द्वारा अधिकृत किया गया था। यह महत्वपूर्ण है कि हम पहचाने कि जब शास्त्र मानक सातवें दिन के सप्त के विपरीत विशेष पर्व सप्त का उल्लेख कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें, चूंकि फसह जो एक दिन का आयोजन है और फिर मत्ज़ा का पर्व जो सात दिवसीय आयोजन है एक के बाद एक शुरू होता है, इसीलिए हमारे पास कुल मिलाकर 8 दिनों की वसंतकालीन दावत अवधि है। इसका मतलब है कि इस त्योहार की अवधि के दौरान कम से कम एक सातवें दिन का सप्त होना तय था और वर्ष के आधार पर 2 सातवें दिन के सप्त आ सकते थे। इसलिए त्योहार के सप्त के दिन आमतौर पर तैयारी के उद्देश्य से स्थापित विशेष सप्त उस 8 दिवसीय पर्व अवधि के दौरान होने वाले 1 या 2 सातवें दिन के सप्त के अतिरिक्त होंगे।
आइए आज के पाठ को यीशु के अंतिम फसह उत्सव पर लागू करके समाप्त करें। मैं इस पर बहुत गहराई से चर्चा करूंगा और अगले पाठ में प्याज की 1 या 2 परतें और छीलूंगा।
सुसमाचारों में हम पाते हैं कि यीशु को मार दिया गया, उसे चट्टानी कब्र में डाल दिया गया और वसंत के त्योहार के दिनों में वह जी उठा। हमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वह फसह के दिन मरा और सप्ताह के पहले दिन जी उठा। हम यह भी जानते हैं कि उन समयों के बीच कम से कम एक सप्त था, वह सप्त जो नियमित सातवें दिन का सप्त होता है। ईसाई परंपरा के अनुसार जिस वर्ष यीशु की मृत्यु हुई उस वर्ष फसह शुक्रवार को था, जो सप्ताह का 6ठा दिन था। इसलिए हमने एक ईसाई पारंपरिक अनुष्ठान स्थापित किया है जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं, और कहते हैं कि यह वह दिन था जब मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था।
उस पारंपरिक ईसाई कार्यक्रम में एक समस्या है, वह यह है कि योना के 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहने की कहानी को यीशु की मृत्यु से लेकर उनके पुनरुत्थान तक की समय अवधि का पैटर्न माना जाता था। ईसाई और यहूदी विद्वानों और शिक्षकों ने खुद को भी शामिल किया है। यह पता लगाने के लिए सभी तरह के प्रयास किए हैं कि हम कब्र में शुक्रवार की रात और शनिवार की रात को केवल 2 रातों के बजाय 3 रातों में कैसे बदल सकते हैं ताकि योना की भविष्यवाणी ठीक से पूरी हो सके। लेकिन कोई भी इस समस्या से निपटने का प्रयास क्यों न करे अगर हमेशा की तरह हमने देखा कि यीशु को शुक्रवार की दोपहर को सूली पर चढ़ाया गया, शुक्रवार की रात से पहले कब्र में ले जाया गया और रविवार की सुबह सूर्योदय के समय जी उठा, तो हम शुक्रवार रात, शनिवार रात और फिर रविवार सुबह की स्पष्ट समस्या से आगे नहीं बढ़ सकते।
हम इस परिदृश्य में 3 रातें नहीं ढूंढ सकते, हालांकि इसके लिए कुछ बहुत ही रचनात्मक प्रयास किए गए हैं। यहां हमें यह समझने में मदद मिलती है कि पर्व के दिन कैसे काम करते थे, और यह पवित्र शास्त्र के अनुसार है, अनुमान नहीं, और विभिन्न प्रकार के सप्त कैसे काम करते थे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे अनदेखा कर दिया गया है, जो शायद पूरी बात की कुंजी है। यह है कि यीशु के युग के दौरान यहूदियों के बीच फसह कब और कैसे मनाना है, इस बारे में अलग अलग परंपराएं थीं। वास्तव में एक ही समय में ठीक 3 अलग अलग परंपराएं चल रही थीं। यहूदी परंपरा थी, जिसका अर्थ है कि यहूदा, यूनानी में यहूदिया, के राज्य में यरूशलेम और उसके आसपास रहने वालों द्वारा मनाया जाता था। फिर सामरी परंपरा थी, जो पवित्र भूमि के मध्य भाग सामरिया में रहते थे, और अंत में गैलीलियन परंपरा थी, जो पवित्र भूमि के सबसे उत्तरी क्षेत्र गैलीली में रहने वालों के लिए थी। सामरी परंपरा उनके इस विश्वास के इर्द गिर्द घूमती थी कि माउंट गेरिज्म वह स्थान था जहां परमेश्वर का मंदिर था, इसलिए सामरी लोगों ने यहूदियों के साथ वफादारी तोड़ दी और अपना खुद का मंदिर बनाया और अपना अलग पुजारी वर्ग स्थापित किया। इसमें यरूशलेम मंदिर में स्थापित प्रोटोकॉल से थोड़ा अलग काम करना शामिल था, जिससे हम कहीं ज्यादा परिचित हैं। गैलीलियन परंपराएं यहूदी परंपराओं से लगभग मिलती जुलती थीं। गैलीलियन यरूशलेम आधारित पुरोहिती के अधिकार को मान्यता देते थे, और इसलिए यरूशलेम में हेरोदेस के मंदिर को बलिदान के लिए उचित स्थान मानते थे। लेकिन गैलीलियनों के सामने एक समस्या थी, वे यरूशलेम से काफी दूर थे, इसलिए वहां यात्रा करना बहुत कठिन था, और यहूदा में रहने वाले इब्रानियों की तुलना में बहुत अधिक समय लेता था। गैलीलियनों को अपने यहूदी भाइयों की तुलना में तीर्थ यात्रा पर्वों, विशेष रूप से, की तैयारी पहले शुरू करनी पड़ती थी, इसलिए उन्होंने पर्वों की सूची में थोड़ा फेरबदल किया, जिसमें यह भी शामिल था कि त्योहार के विश्राम दिन कब शुरू और कब समाप्त होते हैं, तथा इन विशेष पर्वों के विश्राम दिनों पर क्या करने की अनुमति है और क्या करने पर रोक है। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। यीशु और उनके शिष्य गैलीलियन थे, उन्होंने स्वाभाविक रूप से गैलीलियन त्योहार परंपराओं का पालन किया, उनके लिए अन्यथा ऐसा करना अकल्पनीय होता। यहूदी लोग गैलीलियनों द्वारा तय की जाने वाली दूरियों के बारे में कुछ हद तक समझदार थे, और इसलिए उन्होंने इस कठिनाई को समायोजित करने के लिए अपनी ढोरी अलग परंपराओं को अनुमति दी। लेकिन उन्होंने कुछ अन्य परिवर्धनों की परवाह नहीं की, जो गैलीलियन और सामरी दोनों ने फसह अनुष्ठानों में किए थे, जिनका यात्रा दूरी और समय से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने एक अतिरिक्त अनुष्ठान समारोह जोरा, जिसे यहूदी लोग मान्यता नहीं देते थे। समारोह को सेउदाह मफसेकेट कहा जाता था, और यह तब हुआ जब दिन अवीव 13 से अवीव 14 में बदल रहा था। याद रखें, पासओवर 14 अवीव को था। यह भी याद रखें कि शाम के समय लगभग 7 बजे दिन बदल जाता है। इस उत्सव में गैलीलियों और सामरी लोगों ने निर्गमन के ज्येष्ठ पुत्र पहलू पर जोर दिया, यह याद दिलाते हुए कि यह ज्येष्ठ इसराइली थे जिन्हें मृत्यु से बचाया गया था और ज्येष्ठ मिस्रियों को मार दिया गया था। इसलिए गैलीलियों ने घोषणा की कि अवीव 14 फसह का दिन प्रत्येक परिवार के ज्येष्ठ पुत्रों के लिए उपवास का दिन था, जो प्रभु द्वारा उनके जीवन को बचाने के सम्मान में था। हालांकि उन्होंने फसह अवीव 14 की शुरुआत में होने वाले एक अनुष्ठान भोजन को भी जोरा, जिसे सेउदाह मफसेकेट कहा जाता है। क्योंकि इब्रानी दिन सूर्यास्त के समय बदलता है, इसलिए किसी भी इसराइली के लिए नए दिन का पहला भोजन रात का खाना होगा, उनका रात का भोजन है ना। एक पश्चिमी व्यक्ति के लिए दिन का पहला भोजन नाश्ता होता है, क्योंकि यह सूर्योदय के आसपास होता है, जो हमारे दिन की शुरुआत है। इसलिए गैलीलियन और सामरी के ज्येष्ठ पुत्र फसह के दिन की शुरुआत रात्रि भोज के लिए भोजन करते थे, और फिर अगले 24 घंटों तक उपवास करते थे, जब तक कि आधिकारिक फसह सेडर भोजन का समय न हो जाए। मैं फिर से दोहराता हूं ताकि हम सब एक साथ हों, मैं जो आपको बता रहा हूं वह अनुमान या कोई नई आधुनिक व्याख्या नहीं है। यह प्राचीन इब्रानी मिशनाह में पाया जाता है, जिसे धार्मिक यहूदी पूरी तरह से मान्यता देते हैं। वैसे फसह के दिन की शुरुआत करने के लिए रात के खाने का यह अतिरिक्त उत्सव, जिसे सेउदाह मफसेकेट कहा जाता है, का शाब्दिक अर्थ है अंतिम भोज। उनके लिए अंतिम भोज शीर्षक का मतलब था कि यह एक ज्येष्ठ इब्रानी के लिए अंतिम भोज होगा जो गलील या सामरिया में रहता था। वे उपवास करेंगे जब तक कि वह अन्य सभी इब्रानी लोगों के साथ फसह का भोजन नहीं मनाता। मुझे उम्मीद है कि कुछ मानसिक प्रकाश बल्ब जलने लगे हैं।
यह लंबे समय से माना जाता रहा है कि प्राचीन काल में दो फसह सेडर हुआ करते थे, एक फसह से पहले की रात और दूसरा फसह की रात। यह फसह की रात को होता है जिसे आज यहूदी मनाते हैं और जिसके बारे में ईसाई काफी हद तक जानते हैं। हालांकि चूंकि विवरण यहूदी ऐतिहासिक दस्तावेजों की गहराई में दबे हुए हैं, इसलिए इस दोहरे सेडर की वास्तविकताएं और दोनों भोजन कैसे भिन्न थे और उनमें कौन भाग लेता था और क्यों और क्या परोसा जाता था को अनदेखा कर दिया गया है।
मुझे लगता है कि यह जानकारी एक दिन के लिए पचाने के लिए पर्याप्त है। अगले कुछ दिनों तक इस पर ध्यान से सोचें और अगले सप्ताह में आपके लिए एक समय रेखा बनाऊंगा जिससे फसह के दिन यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बहुत सारे रहस्य सुलझ जाएंगे।